भागवत सार के श्रृंखला में सातवें स्कंद के सातवें अध्याय पर चर्चा है। इसके श्लोक को दोहराए। श्री नारद उवाच एवं दैत्य सुतः पृष्टो महाभागवतो सुरः उवाच तान्यस्मयमाना स्मरन् मदनुभाषितम्। श्रीनारद उवाच एवं दैत्यसुतः पृष्टो महाभागवतो सुरः उवाच तान् स्मयमानः स्मरन् मदनुभाषितम्। श्रीनारद उवाच एवं दैत्यसुतः पृष्टो महाभागवतो सुरः उवाच तान् स्मयमानः स्मरन् मदनुभाषितम्। महान संत नारद मुनि ने कहा एवं इस प्रकार दैत्य सुते दैत्यों के पुत्रों द्वारा पृष्टः पूछे जाने पर महाभागवतः भगवान के महान भक्त ने असुरः दैत्यों के वंश में उत्पन्न उवाच कहा तान उनसे असुर पुत्रों से स्मयमानः मंद हास्य के साथ स्मरण करते हुए मद अनुभाषितम् मेरे द्वारा कहा गया। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। नारद मुनि ने कहा यद्यपि प्रहलाद महाराज असुरों के परिवार में जन्मे थे किंतु वे समस्त भक्तों में सबसे महान थे। इस प्रकार अपने असुर सहपाठियों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने मेरे द्वारा कहे गए शब्दों का स्मरण किया और अपने मित्रों से इस प्रकार कहा। तात्पर्य, जब प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे तो उन्होंने नारद मुनि के शब्द सुने थे। कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि गर्भस्थ बालक ने किस तरह नारद के शब्द सुने होंगे, किंतु ये आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन की प्रगति को कोई भी भौतिक दशा रोक नहीं सकती, यह अहैतुक की प्रतिहता कहलाती है। आध्यात्मिक ज्ञान के अर्जन को कोई भी भौतिक दशा रोक नहीं पाती। इसी तरह प्रहलाद महाराज बचपन से ही अपने मित्रों को अध्यात्म ज्ञान बतलाते रहे। इसका प्रभाव भी पड़ता रहा यद्यपि वे सभी बालक थे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राधिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाद्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो। कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्द पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगी मद्गुरौ मन्महाधना मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधु साधु तदायी अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुर। हरे कृष्ण। सातवां अध्याय है। छह अध्यायों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि कैसे प्रह्लाद महाराज अपने पिता को उपदेश देते हैं, पिता क्रोधित होते हैं, मारने का भी प्रयास करते हैं, सारे प्रयास कर लेते हैं, लेकिन प्रह्लाद महाराज को कुछ नहीं होता, भयभीत हो जाता है हिरण्यकश्यपु। ये सोचकर कि ये मर नहीं रहा है और ये देख रहा है कि मैं इसके ऊपर अत्याचार कर रहा हूं, तो निश्चित है कि मेरी भी मृत्यु इस कारण से हो सकती है, और इस घबराहट में दुखी हो जाता है। तो फिर जो शंड और अमरक हैं प्रहलाद के शिक्षक, वो हिरण्यकश्यपु को कहते हैं आप चिंता नहीं करिए, छोटा बालक है, बचपन में बच्चे कुछ चीजें जानते हैं, बड़े होकर उसको भूल जाते हैं, हम लोग फिर से सिखाएंगे इसे, आप इतना दुखी मत होइए। तो फिर से लेकर जाते हैं और प्रहलाद महाराज को कोई रुचि नहीं है वो लोग जो पढ़ा रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि, और इसीलिए उनकी रुचि है भगवान की भक्ति में, क्योंकि भगवान की भक्ति ये धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी परे है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे। मोक्ष भी नहीं चाहिए मुझे, मुक्ति नहीं चाहिए, जन्म जन्मांतर तक बस भवतात भक्ति रहे तो की त्वयी। तो प्रहलाद महाराज को कोई रुचि नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी सुन रहे हैं। लेकिन जब अवसर मिलता, उनके शिक्षक नहीं होते तो बच्चों को बिठा देते, उनको सब ज्ञान देते कि देखो भगवान परम है, उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो बच्चों ने पूछ लिया कि अरे प्रहलाद, तुम तो हमारे साथ रहते हो पूरा समय, और फिर हमसे भी ज्यादा तो महल में बंद रहते हो, राजा के पुत्र हो, हमेशा महल में रहना होता है, ये सब कहां से सीख लिया, कौन आकर तुम्हें पढ़ा गया, हमने तो किसी को नहीं देखा आते हुए। तो उस समय उनका उत्तर देने के लिए अभी अध्याय में प्रहलाद महाराज बताते कि मैंने कैसे सीखा, क्या सीखा और उस ज्ञान का सार क्या है, इसको समझाते हैं। तो पहले 16 श्लोकों में वो केवल ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने नारद मुनि से सुना। फिर 17वें श्लोक से आगे वो वर्णन करते हैं आत्मा का। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को शिक्षा दे रहे हैं, जो छोटे छोटे बालक हैं, 5 साल 6 साल उनकी ही उम्र के, और उनको वो ज्ञान देते हैं आत्मा का। आत्मा का ही नहीं, वो ज्ञान देते हैं कि किस तरह ये आत्मा अलग अलग बुद्धि के स्तरों में इस सारे ब्रह्मांड में घूमती रहती है। तो ऐसे वो वर्णन करते हैं 17वें श्लोक से करीब 28वें श्लोक तक, और उसके बाद 29वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक इस अध्याय के वो भगवान की भक्ति का वर्णन करते हैं, भक्ति क्या है, कैसे करनी चाहिए। और फिर उसके बाद पुनः इस भौतिक जगत में जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसकी व्यर्थता को वो समझाते हैं कि ये जो हम इस जगत में, इस भौतिक जगत में बने रखने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो सब बेकार है, व्यर्थ है। तो ऐसा वो करीब 40वें श्लोक से आगे वो वर्णन करते हैं 48वें श्लोक तक, और अंतिम भाग जो इस अध्याय का है 55वें श्लोक तक, जहां वो वर्णन करते हैं, अपने मित्रों को प्रेरणा देते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको उपदेश देते हैं कि भगवान की भक्ति को स्वीकारो। तो ये पूरा अध्याय है, 7वां अध्याय, बड़ा महत्वपूर्ण। तो प्रारंभ करते हैं, क्योंकि बच्चों ने प्रश्न किया कि तुम्हें कहां से पता चला, हमने कभी देखा नहीं कि तुम बैठकर पढ़ रहे हो या किसी ने आकर तुम्हें पढ़ाया। तो तब वो इतिहास कहते कि कैसे उन्हें पता चला। तो नारद मुनि का वो वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि जब हमारे पिता असुर श्रेष्ठ हिरण्यकश्यपु तपस्या करने चले गए मंदार पर्वत पर, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं पहले के अध्यायों में कि वो तपस्या करने चले गए, तो जो देवता थे उन्होंने आक्रमण कर दिया, क्योंकि देवता सोचने लगे अब तो ये रहा नहीं। इतना ही नहीं, देवता सोचने लगे कि अब तो हिरण्यकश्यपु समाप्त हो गया, उसकी सारी शक्ति चली गई, अब उसको उपरास्त तो हो गया। उदाहरण देते हैं कि जैसे बहुत बड़ा सर्प होता है, उसको छोटी छोटी चींटियां जब बहुत सारी होती हैं वो खा जाती हैं सर्प को, तो ऐसे ही हिरण्यकश्यपु बहुत बड़ा सर्प है, लेकिन उसके ही जो पाप उसने किए वो सारे पाप मिलकर उसको अब नाश कर देंगे, उसका नाश हो गया। ये सोचकर सारे देवता, आप जान लीजिए, जो इधर उधर सब घबराए हुए थे आ गए और उन्होंने आक्रमण कर दिया, सारे असुरों को मारने लगे, असुर सेनापति भागने लगे, सब इधर उधर भागे। और इतना ही नहीं, देवताओं ने उसके राजमहल में घुसकर उसको, उसकी जो भी संपत्ति थी वो सब लूटना चालू कर दिया, उसको तोड़ना फोड़ना, सारा महल खत्म। और फिर वहां पर उनको उसकी पत्नी मिली हिरण्यकश्यपु की, कयाधु। तो इंद्र ने कयाधु को पकड़ा और कयाधु को लेकर जाने लगे। क्यों? क्योंकि उस समय कयाधु गर्भवती थी, तो वो ले जाने लगे और कयाधु पुकारने लगी, स्त्री थी, इंद्र ले जा रहे हैं तो कयाधु पुकारने लगी, और ऐसे में नारद मुनि वहां पर आए। तो नारद मुनि ने इंद्र से कहा कि क्यों तुम इसको लेकर जा रहे हो, ये तो एक पर स्त्री है, किसी दूसरे की विवाहिता स्त्री को ऐसे लेकर जाना ये तो बहुत घोर पाप है, अपराध है, तुम ऐसा अपराध क्यों कर रहे हो। अर्थात देखिए, कभी कभी इतनी ऊंची स्थिति पर होते हुए भी इंद्र सारे देवताओं के राजा हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भक्त भी हैं। हम जब भी इंद्र की बात करते हैं हम लोग उनको राजा या लोभी, सत्ता का लोभी, गलत काम करने वाला इत्यादि मानते हैं, लेकिन वो महान भक्त हैं, भगवान उनके हाथ से स्वयं भोग आज भी स्वीकार करते हैं। तो इतने महान वो भक्त हैं, भगवान ने उनके भाई के रूप में जन्म लिया, आज भी स्वर्ग में वहां पर वो विराजमान है और उनसे वो सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो इतने वो महान भक्त भी हैं, ये हम क्यों कह रहे हैं कि ये जान लीजिए कि भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब वो भक्त हो गया जो वो चाहे कर सकता है। कभी कभी हम जिस स्थान में रहते हैं हम लोग वहां के नियमों का पालन नहीं करते, जैसे मान लीजिए हम यहाँ भारत में रहते हैं, कारोबार में रहते हैं, नियम है कुछ, तो हम लोग सोचते हैं हम तो भक्त हो गए, हमें नियम की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी हम लोग ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं कि महान आचार्य थे, उन्होंने भगवान की भक्ति के लिए ऐसा किया जो सामाजिक दृष्टि से गलत था। जैसे उदाहरण है कि एक आचार्य ने मंदिर बनाने के लिए चोरों का इस्तेमाल किया, उनको चोरी में लगाया, वो भी एक्सपर्ट चोर थे सारे, कोई तो ताला तोड़ने में एक्सपर्ट था, कोई कूदने में एक्सपर्ट था, उन सबको मिलाकर किया और जब चोरी वोरी हो गई, मंदिर बन गया, तो उनको पानी में फेंकवा दे के चलो जाओ, डूब गए वो जाकर पानी में, ऐसे कथा है। तो कितना घृणित कार्य, तो आचार्य ने कर लिया तो क्या हम भी कर सकते, नहीं। तो यहां ये उदाहरण है कि भले इतना महान भक्त है, इतनी श्रेष्ठ स्थिति पर है, पद पर है, देवताओं का राजा है, लेकिन नारद मुनि ने उसको समझा ये भक्त है। नारद मुनि ने कहा ये गलत है, परस्त्री का अपहरण, वो भी एक विवाहिता स्त्री और वो भी जब वो गर्भवती हो, यही बातें वसुदेव ने कंस को कही थी। जब कंस देवकी का वध करने वाले थे तो कंस को भी यही समझाया कि तुम्हारी बहन है, स्त्री है, अभी अभी विवाह हुआ है, ऐसी अवस्था में उसको मारना ठीक नहीं। तो नारद मुनि ने कहा क्यों लेके जा रहे हो, क्योंकि नारद मुनि तो जानते थे कि इंद्र ऐसा तो नहीं हो सकता कि काम भावना से कामुक होकर किसी स्त्री को लेकर जा रहे हैं, उसके पास तो बहुत सारे अवसर आए हैं, क्या आवश्यकता है यहां से ले जाने। तो इंद्र ने कहा कि देखो इसके गर्भ में बालक है, हिरण्यकश्यपु का अंश है, अब एक ही हिरण्यकश्यपु ने इतना आतंक मचा दिया हमारे लिए, अब अगर ये दूसरा आ गया तो ये क्या करेगा, इसीलिए मैं इसे ले जा रहा हूं, मैं रखूंगा, जब ये जन्म होगा तो मारूंगा। देखिए अपने शत्रु को मारना चाहता है इंद्र, लेकिन गर्भ में नहीं मार रहा, एक बार प्रयास कर चुका है ना, हमने पिछली बार पढ़ा दीति के गर्भ में घुस के प्रयास किया तो एक की जगह 49 उत्पन्न हो गए, तो अब वो गलती नहीं करना चाहिए उसको। तो उसने कहा कि इसको ले जाऊंगा, जैसे ही बालक जन्म होगा उसको मार दूंगा। तो इंद्र जानते थे कि बालक को गर्भ में नहीं मारना चाहिए, लेकिन आजकल अभी कुछ पिछले अध्याय में प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिख रहे थे कि शिक्षा नहीं दी जाती, समाज शिक्षा देता है कि बालक को गर्भ में मार दो। तो इंद्र ने कहा कि मैं इसलिए ले जा रहा हूं। तो नारद मुनि ने कहा तुम जानते हो इसके गर्भ में कौन है, इसके गर्भ में एक महान भक्त है। अब देखिए एक असुर की वो पत्नी है, एक महान असुर का ये अंश है, ये तो सब जानते थे, और लेकिन नारद मुनि कह रहे हैं कि इसके गर्भ में महान भक्त है, आदरणीय है जो इसके, और ये आगे चलकर बहुत श्रेष्ठ भक्त बने, भक्त होगा, बड़ा प्रसिद्ध भक्त होगा। तो जब नारद मुनि ने ये कहा इंद्र ने स्वीकार कर लिया। कितनी विचित्र बातें हम इसमें देखते हैं, वो देख रहे हैं असुर के घर में उत्पन्न होने वाला है, असुर है, पत्नी असुर की पत्नी है, सब है, लेकिन केवल नारद मुनि ने कहा कि नहीं इसके गर्भ में भक्त है, इंद्र ने स्वीकार कर लिया। और स्वीकार कैसे किया? इंद्र ने तुरंत कयादु को छोड़ दिया, प्रणाम किया, कयादु को प्रणाम किया, कयादु की प्रदक्षिणा की इंद्र ने। किस लिए? महान भक्त इसके गर्भ में है। जिस समय श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में थे, सारे देवताओं ने जाकर स्तुति की इसको, गर्भ स्तुति। दसवें स्कंद पर जब हम लोग पहुंचेंगे तो उस अध्याय को पढ़ेंगे, गर्भ स्तुति। तो यहां भी इंद्र ने देखा कि महान भक्त है, केवल इतना सुना, कितना विश्वास उसे है नारद मुनि के वाक्यों पर। उसने कोई प्रश्न नहीं किया, आप कैसे कह सकते हैं, कोई स्कैनिंग वगैरह की है या स्कैनिंग में तो पता नहीं चलेगा कि भक्त है कि क्या है, कैसे आपको पता? कोई प्रश्न नहीं। नारद मुनि ने कहा, स्वीकार, ये भक्ति है, ये भक्ति में प्रगति के लक्षण है, इसीलिए इंद्र भक्त है। उसने कोई विरोध नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि नारद मुनि, नहीं नहीं आप केवल इसको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं इत्यादि, नहीं। जैसे ही कहा और हृदय से स्वीकार किया, इसका प्रमाण प्रदक्षिणा की उसने कयादु की, कि अभी तो बालक गर्भ में है लेकिन महान भक्त है, अभी प्रदक्षिणा कर लेता हूं, मेरे अपराध क्षमा हो जाएंगे, मैंने अपराध कर दिया कि इसकी माता को मैं ऐसे खींच कर ले जा रहा हूं। तो तब नारद मुनि ने सोचा कि कयादु तो सुरक्षित नहीं है। कयादु ने भी नारद मुनि से कहा, बहुत धन्यवाद दिया, लेकिन उसने कहा कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, मेरे पति तो चले गए हैं, पता नहीं कितने वर्ष उनको तपस्या में लग जाएंगे, और मैं यहां अकेली ऐसे, अब तो आपने बचा लिया, आगे कौन बचाएगा। तो नारद मुनि ने उसे अपने आश्रम में शरण दी, ठीक है तुम मेरे साथ रहो, मेरे आश्रम में रहो। और कयादु ने एक और प्रार्थना की नारद मुनि से कि मैं इस संतान को अब जन्म नहीं देना चाहती इस समय, जब तक मेरे पति वापस नहीं आए। तो ये कारण था कि कयादु गर्भवती थी और इतने समय तक हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की। प्रश्न आता है कि हिरण्यकश्यपु तो बहुत समय, लंबे समय तपस्या की, और जाने से पहले कयादु गर्भवती हो गई थी, तो फिर बालक का जन्म क्यों इतना लेट हुआ, देर से क्यों हुआ, 5 साल के ही क्यों रहे, तब तक तो उनको बहुत बड़ा हो जाना चाहिए था। कयादु ने नारद मुनि से कहा, मैं इसे जन्म नहीं देना चाहती, अभी सुरक्षित नहीं है, जब मेरे पति वापस आएंगे तब मैं जन्म दूंगी इसे। तो नारद मुनि ने कहा, ठीक है, तब तक तुम आश्रम में रहो, सेवा करो। तो कयादु नारद मुनि के आश्रम में रहकर नारद मुनि की बड़ी अच्छे से भक्ति भाव से, श्रद्धा से सेवा करने लगी। प्रभुपाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात को यहां तात्पर्य में कहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं कि ऐसी चीजों को लेकर आगे आने वाले लोग बहुत गलत कार्य कर सकते हैं, इसीलिए वो समझाते हैं। क्या कह समझाते हैं? प्रभुपाद प्रश्न करते हैं, नारद मुनि ब्रह्मचारी हैं, स्त्रियों से उन्हें कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए, युवा अवस्था में हैं और ये भी युवती हैं, स्वाभाविक है, संतान को जन्म देने वाली कोई बहुत वृद्धा तो नहीं थी, युवती है। तो कैसे नारद मुनि ने इसको अपने आश्रम में रख लिया और कैसे इसकी सेवा स्वीकार कर रहे थे? प्रभुपद लिखते हैं कि शास्त्रों में तो कहा गया है कि अपनी माता और अपनी बहन के साथ भी अकेले नहीं रहना चाहिए, इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि कोई पाप हो सकता। और यहां नारद मुनि किसी दूसरी स्त्री के साथ उससे सेवा स्वीकार कर रहे हैं, तो ये कैसे? प्रभुपद कहते हैं कि इसके उदाहरण भी है, हरिदास ठाकुर, और एक उदाहरण देते हैं, हरिदास ठाकुर भी अकेले थे, रात के समय वेश्या उनके पास आई और उसने तो आकर सीधे उनको कहा कि मैं आपके साथ संग करना चाहती हूं। बहुत सुंदर थी वेश्या, सारे उस स्थान में बड़ी प्रसिद्ध थी, लेकिन हरिदास ठाकुर ने कुछ नहीं कहा, उल्टा उसको भक्त बना दिया, उसको कहा कि ठीक है बैठो, लेकिन उसको भक्त बना दिया। और उसके बाद प्रभुपाद चेतावनी देते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नारद मुनि और हरिदास ठाकुर, प्रभुपाद कहते हैं ये उदाहरण, ये दुर्लभ उदाहरण है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नारद मुनि ने एक स्त्री को रखकर आश्रम में सेवा ली तो मैं भी ले सकता हूं, बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद कहते हैं हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि नारद मुनि, हरिदास ठाकुर, इनका स्तर अलग है, हम लोग उस स्तर पर नहीं है। इसीलिए कभी भी ब्रह्मचारी, सन्यासी, जो वैरागी हैं, उनको स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो चेतावनी देते हैं प्रभुपाद की। क्यों देते हैं? क्योंकि इसको पढ़कर हो सकता है आगे आने वाले लोग ये कह सकते कि देखो नारद मुनि ने अकेले रहे आश्रम में, उन्होंने एक स्त्री से ले लिया, तो जब नारद मुनि ले सकते हैं, महाजनों ये न गतः से पंथा, हमारा पंथ तो ये है कि हम महाजनों के चरण चिन्हों पर चलें, तो फिर क्या तकलीफ है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते महाजनों ये न गता से पंथा, मतलब ये नकल करना नहीं है। शिव जी ने जहर पिया, करो नकल, लोग तो भांग पीते हैं शिवरात्रि के दिन। कहां लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है कि शिव जी ने भांग पी? बस शिव जी ने जहर पिया, अगर आप कहते हो नकल करना चाहते हो, लो जहर पियो, तब पता चलेगा शिव जी कौन है। तो इसी तरह हमें नकल नहीं करनी चाहिए कि हाँ नारद मुनि ने कयादु को इतने लंबे समय तक रखा और इसमें लिखा है कि उसने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उनकी सेवा की, तो सेवा भी स्वीकार की, तो फिर कैसे। प्रभुपाद कहते वो उदाहरण है, हमारे लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। तो नियम ये है कि जो ब्रह्मचारी हों, सन्यासी हों, उनको स्त्रियों से कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारी अभी शुद्धता इतनी नहीं है हरिदास ठाकुर की तरह कि रात भर एक स्त्री बैठे रहे आपके सामने अकेले जंगल में कहीं पर, और आप बड़े आराम से भगवान का नाम जप करते रहो और उसको भक्त बना दो, उसके हृदय में शुद्धता ला दो, असंभव है। उसकी अशुद्धता आपके हृदय में आ जाएगी। इसीलिए ब्रह्मचारियों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि स्त्रियों के साथ कोई संपर्क नहीं रखें किसी भी तरह का। मन हमारा इतना चंचल है कि भक्ति के नाम पर, सेवा के नाम पर वो हमें प्रेरणा देता है कि कर सकते हो, स्त्रियों से संपर्क हो सकता है, बिल्कुल नहीं। वैसे समाज में व्यवस्था या भक्त समाज में भी व्यवस्था तब अच्छी होगी जब ब्रह्मचारी और गृहस्थ अपने अपने कर्तव्यों को करते हुए, नियमों का पालन करते हुए भक्ति में आगे बढ़े, तब ये व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। ब्रह्मचारी सदैव ये ध्यान रखें कि उन्हें स्त्रियों से कुछ लेना देना नहीं है, और स्त्रियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है मंदिर में जो भक्त होते हैं माता जी, तो उनको लगता है कि ठीक है ये तो हमारे पुत्र की तरह है या ये ऐसे हैं तो हम बातचीत कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये नियम है सन्यासियों से भी, अपने गुरु से भी स्त्रियों को कभी अकेले बात नहीं करना चाहिए। हम जैसे स्त्रियां होती हैं, वो लोग किसी गुरु को स्वीकार कर लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, उनसे भी कभी अकेले में बात नहीं करना चाहिए, प्रणाम भी दूर से करना चाहिए, मिलने जाना है तो कोई ग्रह कोई भक्त को साथ में लेकर मिलना चाहिए, कभी अकेले नहीं मिलना चाहिए। अगर ये सारी चीजों का नियम का पालन होगा तो गृहस्थ भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि वो ब्रह्मचारियों की रक्षा करें। रक्षा कैसे करें, उनको अपने पुत्र की तरह माने, लेकिन साथ ही साथ वे जिस मार्ग पर चल रहे हैं अर्थात एक वैराग्य के पथ पर चल रहे हैं उनमें चलने में मदद करें। तो वो ये देखें कि किसी प्रकार से ब्रह्मचारियों को ऐसी स्थिति में ना आना पड़े जहां उनको स्त्रियों से संपर्क हो। ये गृहस्थों का कर्तव्य है, गृहस्थ भक्तों का, कि ये इसको माने। और स्त्रियों को स्वयं इस चीज को जानना चाहिए कि हम ऐसा आचरण करें कि जिससे ये जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, जो वैरागी हैं, जो भगवान के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, वो किसी भी तरह पीछे नहीं गिरे। इसीलिए स्त्रियों को भी उनसे दूर रहना चाहिए, बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कार्य है, सेवा की दृष्टि से बात करना भी है, तो किसी गृहस्थ भक्त के द्वारा ये बात होनी चाहिए, इससे शुद्धता बनी रहेगी। और जब तक आंदोलन में शुद्धता रहेगी तब तक यह आंदोलन बढ़ेगा, क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का बढ़ने के लिए जो शक्ति है वो शुद्धता है। प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद कहते हैं शुद्धता नहीं होगी तो कैसे यह आंदोलन बढ़ेगा। प्रभुपाद ने अकेले बढ़ाया यह आंदोलन, क्या था उनके पास, शुद्धता। उनकी शुद्धता थी कि इतना आंदोलन बढ़ गया, अकेले व्यक्ति ने। अभी हम लोग सब मिलकर उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना प्रभुपाद ने अकेले 10-12 सालों में कर दिया। शुद्धता ये शक्ति है, इसीलिए प्रभुपाद ने कहा प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धता ही शक्ति है। तो इस शुद्धता को बनाए रखने के लिए ये जो गृहस्थ और ब्रह्मचारियों के मध्य, हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मचारी अहंकारी होकर अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे, गृहस्थ अहंकारी होकर अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे, ब्रह्मचारी सोचने लगे देखो हम वैरागी हैं, ये गृहस्थ लोग घर में रहते हैं, कामी लोग, पापी लोग, ये अहंकार है। ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए ब्रह्मचारियों को कि हम बड़े श्रेष्ठ हैं, हमने घर को त्याग दिया। दूसरी ओर गृहस्थों को भी ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि देखो हम पैसा कमा के हम चलाते हैं मंदिर, अगर हम पैसा नहीं देते ये लोग कहां से खाएंगे, ये ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं या सन्यासी हैं, ये लोग तो कुछ काम नहीं करते हैं तो फिर ये लोग कहां से खाएंगे, ये तो हम हैं जो घर घर इतना मेहनत करके धन कमाते हैं और उससे मंदिर चलता है, ये अहंकार भी गलत है। तो ब्रह्मचारियों के लिए वैराग्य का अहंकार गलत है, क्योंकि अगर वैराग्य का अहंकार आ गया तो फिर माया का बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ता है और पता भी नहीं चलता कि व्यक्ति कब वैरागी से गृहस्थी बन गया, पता भी नहीं चल रहा। हंसते खेलते बच्चे को हाथ में लेते हुए आता है, हा? ये थप्पड़ पड़ता है माया का। अगर अहंकार हो गया कि मैं बहुत अच्छा ब्रह्मचारी हूं, ये सारे गृहस्थ पतित जीवात्माएं। लेकिन दूसरी ओर अगर गृहस्थों को अहंकार हो गया कि हमारे अंदर हम इस मंदिर को चलाते हैं, हम धन देते हैं, ये ब्रह्मचारी सब बैठकर खाते हैं, अगर ये अहंकार गृहस्थों को हो गया तो उनका पतन निश्चित है। उनके अंदर से शुद्धता चली जाएगी, भक्ति चली जाएगी, कृष्ण चले जाएंगे। इसीलिए अहंकार किसी सन्यासी को अहंकार हो जाए, मैं बहुत बड़ा गुरु हो गया हूं, डंडा हाथ में है, अब तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, सब मेरे अधीन है, पतन निश्चित है। तो इसीलिए समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए। गृहस्थों का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो अन्य तीन आश्रमों को, अर्थात विशेषतः ब्रह्मचारी सन्यासी आश्रम को वे चलाएं। तो ब्रह्मचारी सन्यासियों को उन्हें अपना पुत्र मानना चाहिए कि जैसे मेरा कर्तव्य है कि मेरे पुत्र को सब कुछ मिले, वो एक दिन भी भूखा नहीं रहे। ये हम लोग देखते हैं जब घर वह व्यक्ति चलाता है, अगर उसके पास पैसा नहीं होता वो कहीं से लेकर आता है, भीख मांगता है, लोन लेता है, लेकिन देखता है कि मेरा बच्चा भूखा नहीं रहे, उसको खाने को मिले। ये कर्तव्य गृहस्थों का है कि इस तरह से उन्हें अपने ब्रह्मचारी और सन्यासी बच्चों का पालन करना चाहिए कि मेरे पुत्र के समान है, मेरा कर्तव्य है। लेकिन एक और कर्तव्य उनका है, हाँ, भौतिक दृष्टि से जो उन्हें चाहिए जैसी सुविधाएं वो तो वो प्रदान करें, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखें कि उनकी शुद्धता बनी रहे। कभी ब्रह्मचारियों को ऐसी स्थिति में ना डालें जहां उनको स्त्रियों के साथ बहुत ज्यादा संपर्क हो और जिसके कारण वो अपने वैराग्य को पालन ना कर पाए। तो इस तरह से अगर ये चलेगा, गृहस्थ वक्त इसका ध्यान रखेंगे, ब्रह्मचारी बहुत ध्यान रखेंगे, स्त्रियां ध्यान रखेंगी कि हम कभी स्वयं जाकर बात नहीं करें, हम कभी जाकर ऐसी स्थिति, चाहे सेवा के लिए हो या किसी भी कारण के लिए हो, तब फिर आश्रम बढ़ेगा, शुद्धता बनी रहेगी और फिर सभी लोग भक्ति में प्रगति कर सकेंगे। तो गृहस्थों को लाभ मिलेगा ब्रह्मचारियों के, क्योंकि ब्रह्मचारी सन्यासी जिन्होंने समर्पण कर दिया है भगवान को, अगर उनकी सेवा वो करेंगे तो उससे उन्हें लाभ मिलेगा, कृष्ण प्रसन्न होंगे। और ब्रह्मचारी और सन्यासियों को गृहस्थों के प्रति आदर को बढ़ाकर, ये जानते हुए कि ये मेरे लिए पिता के समान है, इस आदर को बढ़ाकर और उनको भी अपनी भक्ति के द्वारा, अपने अच्छे उदाहरण के द्वारा, वैराग्य के द्वारा उनको भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, ये ब्रह्मचारियों का कार्य है। तो आध्यात्मिक वातावरण को बनाए रखना, क्योंकि गृहस्थ जीवन में कठिन हो जाता है, तो आध्यात्मिक वातावरण को बनाए रखकर गृहस्थों को प्रेरणा देना, ये ब्रह्मचारियों का कार्य है। और ऐसे जब समाज चलेगा तो भक्ति में प्रगति होगी। इसीलिए किसी ब्रह्मचारी वैरागी को यह नहीं सोचना चाहिए कि नारद मुनि ने एक स्त्री को इतने समय तक रखा, उनसे सेवा स्वीकार की, तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, कोई अहंकार नहीं हृदय में, कोई गलत भावना नहीं, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ब्रह्मचारियों को जान लेना चाहिए कि हमने समर्पण कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किया है, और अगर इस भौतिक जगत के किसी भी और आकर्षण की ओर जाने से अगर हमारे कृष्ण भक्ति में बाधा है तो उसको त्याग देना चाहिए। तो इस तरह नारद मुनि ने कयाधु को अपने आश्रम में रखा और प्रहलाद महाराज कहते कि उस समय उन्होंने हम दोनों को ज्ञान दिया, अर्थात वो तो मां के गर्भ में थे लेकिन मां के गर्भ में भी वो ज्ञान सुन रहे थे। नारद मुनि ज्ञान दिया करते थे, उनकी माता भी सुनती थी, प्रहलाद महाराज भी सुनते थे। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि जो भक्ति है अहैत की अप्रतिहता, ये कभी रुकती नहीं है। ये आश्चर्य की बात है कि मां के गर्भ में कैसे बालक सुन सकता है, सुन सकता है। ये प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, उन्होंने सारा ज्ञान सुना और इतने इतने शक्तिशाली हो गए कि सतत भगवान का स्मरण करते थे। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति के लिए कोई बाधा है, अवस्था कोई अवस्था बाधा नहीं है। व्यक्ति गर्भ में भक्ति कर सकता है, बचपन में भक्ति कर सकता है, युवावस्था में कर सकता है, मृत्युशैया पर भक्ति कर सकता है, अजामिल का उदाहरण है। तो भक्ति के लिए कोई सीमा नहीं है कि भक्ति केवल इतना इतना होगा तब होगी। अन्य सभी मार्गों के लिए, योग विधि के लिए, कर्म के लिए, ध्यान के लिए स्थितियां हैं, उन स्थितियों के अनुसार ही वो कार्य किया, वो मार्ग का पालन किया जा सकता। भक्ति के लिए कोई स्थिति नहीं, कहीं भी बैठकर की जा सकती भक्ति। तो इसीलिए प्रभुपाद समझाते अप्रतिहता। तो मां के गर्भ में जब बालक होता है, इसीलिए एक गर्भवती महिला के लिए अनिवार्य है कि वो उस समय में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक क्रियाओं को बढ़ाए। जैसे प्रहलाद महाराज ने सुना, ऐसे उसको सुनना चाहिए ताकि वो भी सुने। जैसे प्रहलाद महाराज कहते, मेरी माता ने सुना और मैंने भी सुना, क्योंकि ये जो ध्वनि है ये दिव्य ध्वनि है। इसीलिए दिव्य ध्वनि को कोई बाधा नहीं है कि मां के गर्भ में अंदर नहीं प्रवेश कर सकती। भौतिक ध्वनि को बाधा है, भौतिक ध्वनि हमारी, अगर हम अभी माइक यूज नहीं करें तो आप तक नहीं पहुंचेगी, गर्भ के अंदर जाना तो दूर की बात है। लेकिन आध्यात्मिक ध्वनि, अर्थात ये जो भागवत के श्लोक है, भागवत की कथा है, ये किसी भी तरह आत्मा तक पहुंच सकती है। तो इसीलिए बहुत सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, आध्यात्मिक क्रियाएं बढ़ानी चाहिए। माता का कर्तव्य है कि जैसे कयाधु नारद मुनि की सतत सेवा में लगी हुई थी, उसका एक ही ध्यान था कि मुझे नारद मुनि की अच्छी सेवा करनी है। फिर जब नारद मुनि सुनाया करते थे तो ध्यान से सुनती थी, इसका लाभ हुआ कि प्रहलाद महाराज इतने अच्छे भक्त बने। तो क्या कयाधु भी भक्त बनी या नहीं, प्रश्न तो ये आता है ना। सुना तो दोनों ने, और प्रमुख तो कयाधु सुन रही थी, प्रहलाद महाराज तो अंदर थे। तो कयाधु भक्त बनी कि नहीं बनी, उसको तो और श्रेष्ठ भक्त हो जाना चाहिए था। लेकिन हम लोग ये नहीं सुनते हैं, हमने ये नहीं सुना कि कयाधु ने जाकर हिरण्यकशिपु को कहा हो, तत्साधु मन्ये असुरवर विदेहिनाम सदा समुद्विग्नया श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कहीं वर्णन नहीं है कि कयाधु ने सिखाया हो जाके। तो ऐसा क्यों, जब कयाधु ने सुना और वो भक्त नहीं बनी लेकिन प्रहलाद महाराज बन गए। प्रहलाद महाराज इसका कारण देते हैं। प्रहलाद महाराज कहते कि मेरी मां ने भी सुना था लेकिन वो भूल गई, वो ध्यान नहीं रखा, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, स्त्री होने के कारण इतना ज्यादा उस पर उसने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो भूल गई इस बात को, लेकिन मुझे स्मरण रहा। ये खुद कहते हैं प्रहलाद महाराज, मेरी माता भूल गई लेकिन मुझे याद है। तो इसीलिए देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि जब बालक गर्भ में हो, तो इसीलिए बालक के संस्कार गर्भ से प्रारंभ होते हैं, जन्म के बाद से नहीं, क्योंकि जन्म लेने तक तो वो पहले ही 8-9 महीने का हो चुका है। जिस दिन जन्म लेता है, हम लोग उस दिन उसको जन्म मानते हैं ना, कि आज से जन्म हुआ, 1 साल बाद कहते हैं 1 साल का, नहीं वो तो पहले जिस दिन जन्म हुआ उस दिन 9 महीने का तो हो चुका है। तो इसीलिए बालक के संस्कार गर्भ से प्रारंभ होते हैं। तो गर्भवती स्त्रियों के लिए अनिवार्य है कि वो ऐसे वातावरण में रहें जहां सदैव कृष्ण का स्मरण हो सके, ताकि बालक प्रहलाद जैसा बने। ऑफकोर्स पिता को हिरण्यकश्यपु नहीं बनना चाहिए, ये बात भी है, लेकिन बालक को प्रहलाद बनना चाहिए। तो फिर वो कहने लगे कि मेरी माता भूल गई, लेकिन मुझे स्मरण है। और अब क्या स्मरण है उसको वो कहते हैं कि क्या मैंने सीखा। तो सबसे पहले वो ये कहते हैं आत्मा का विषय। वो कहते हैं कि हे दैत्य पुत्रों, ये जान लो कि जो आत्मा है, हम सब जो हैं, ये हम आत्मा हैं, अर्थात इस भौतिक चीजों के परे। ये जो भौतिक 24 तत्व हैं, जैसे ये भूमि राप नलो वायु कम मन बुद्धि रे विचार, फिर इंद्रियां हैं, फिर इंद्रियों के तन्मात्राएं हैं और तीन गुण हैं। तो कहते हैं कि ये जो सब चीजें हैं भगवान की, भिन्न प्रकृति और आठ भगवान, तीन गुण और फिर अन्य चीजें, ये सारी आत्मा से परे हैं। आत्मा केवल देखने वाला है इन सब चीजों को, आत्मा इसमें नहीं है। जैसे हम लोग भगवद गीता में भी समझते हैं, भगवान भगवद गीता में इन 24 तत्वों का वर्णन करते हैं, भूमि राप नलो वायु इत्यादि का। तो कहा वो कहते महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचम चेन्द्रिय गोचरः। तो 24 तत्वों का वर्णन करते हैं वो, कि 24 तत्व हैं, लेकिन आत्मा 25वां तत्व मानी गई है और परमात्मा ये 26वां तत्व माना गया। तो इस जगत में 26 तत्व हैं, 24 भौतिक, 25वीं आत्मा और 26 परमात्मा। प्रभुपाद इसको तात्पर्य में समझाते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं आत्मा है, और आत्मा अलग अलग शरीर धारण करती है अपने कर्म के अनुसार। और इतना ही नहीं, आत्मा जब ये शरीर धारण करती है तो उसकी बुद्धि है, लेकिन ये बुद्धि तीन अवस्थाओं में हमेशा रहती है, सुप्त अवस्था, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, तीन अवस्थाओं में रहती है। तो इन तीन अवस्थाओं का वो वर्णन करते हैं। हम लोग भी देख सकते हैं इस जगत में हमारी ये तीन अवस्थाएं होती हैं। कभी हम लोग जागृत रहते हैं भागवत शुरू होने के बाद, स्वप्न अवस्था में या सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, सुषुप्ति में आंखें बंद हो जाती हैं, और कभी हम लोग स्वप्न देखते हैं। तो क्या अवस्थाएं हैं ये तीन अवस्थाएं? स्वप्न अवस्था मतलब सुषुप्ति है, जहां व्यक्ति बहुत गहन अंधकार में है, अज्ञान में है, कोई ज्ञान नहीं। स्वप्न अवस्था जहां वो अपने आप को कुछ मानता है, स्वप्न देखने लगता, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये स्वप्न है हमारे लिए, हम लोग तो हैं नहीं। मुक्ति का अर्थ ही यही है कि इस स्वप्न अवस्था से बाहर आना। मुक्ति हित्वन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। तो और जागृत अवस्था क्या है? जहां हम अपने आप को ठीक से जान सकें, हम कौन हैं, हमारा क्या संबंध है भगवान से, हमारा कार्य क्या है, जागृत अवस्था हो सकती है। तो जागृत, सुप्त और स्वप्नावस्था, तो इनका वो वर्णन करते कि आत्मा इसी में रहती है, लेकिन है इसके परे। आत्मा इन सब स्थितियों के परे है, तीन गुणों के परे है, और केवल शरीर धारण करती रहती है आत्मा। तो ऐसे आत्मा का बहुत वो वर्णन करते हैं कि कैसे जो ये शरीर है, ये 6 प्रकार के विकारों से गुजरता है, लेकिन आत्मा कभी इन 6 प्रकार के विकारों से नहीं गुजरती। 6 प्रकार के विकार मतलब जन्म लेना, थोड़े बड़े होना और फिर धीरे धीरे मृत्यु की ओर चले जाना। तो आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा सदैव रहती है, इसका वर्णन वो करते हैं। पहले ज्ञान देने की शुरुआत ही वो उस तरह से करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि आत्मा के परे परमात्मा है। तो आत्मा को कैसे जान सकते हैं, वो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक दक्ष व्यक्ति होता है, उसको जियोलॉजिस्ट कहते हैं, तो यह भूमि का जो बहुत बड़ा दक्ष व्यक्ति होता है, तो वो ऊपर से देखकर बता देता है कि कहां पर सोना होगा। सोना दिखता नहीं है, लेकिन वो बताते कि यहां 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 खुद सोना मिलेगा। जैसे पानी के लिए भी कई लोग होते हैं जो दक्ष होते हैं, उनको लाया जाता है, उनको पूरी भूमि घुमाई जाती है, कहते यहां पर खोदो तो पानी मिलेगा, फिर वो वहां खोदते हैं तो पानी मिलता है। तो उदाहरण देते कि जैसे ये व्यक्ति होता है जो ऊपर से देखकर बता देता है, ऐसे ही जो भगवान की उपस्थिति या आत्मा की उपस्थिति को भी दक्ष लोग देख पाते हैं उसके लक्षणों के द्वारा। तो आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना। हम लोग चेतन हैं, हम में प्राण है, हम बोल रहे हैं, ये लक्षण है आत्मा के। चेतना को आत्मा का लक्षण माना गया। अगर व्यक्ति चेतन नहीं है तो अर्थात आत्मा नहीं है, मृत व्यक्ति में आत्मा नहीं होती। तो इस तरह प्रहलाद महाराज आत्मा का वर्णन करते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये जो हम लोग अलग अलग शरीरों में घूमते हैं आत्मा, उद्देश्य ये है कि हम भगवान की भक्ति करें। और तब वो भगवान की भक्ति का वर्णन करने लगते हैं और वो कहते हैं कि भगवान की भक्ति जब कोई करता है तो उसके तीन लाभ वो देते हैं अपनी शिक्षाओं में। पहला लाभ वो देते हैं कि हमारे हृदय में जो सकाम कर्म की इच्छा है, उसके जो बीज है, उसको भक्ति जला देती है। सकाम कर्मों को ही नहीं, सकाम कर्म के बीजों को जला देती है। अर्थात जब हम भक्ति करते हैं तो हृदय से इस भौतिक जगत में कुछ पाने की इच्छा भी चली जाती, बीज समाप्त हो जाता। ये जो हमारे कर्म हैं, ये बहुत अलग अलग अवस्थाओं में हमें मिलते हैं। पद्म पुराण में समझाया गया है कूटम बीजम फलोन्मुखम, तो कहा गया है कि ये जो पाप है या ये जो कर्मों का फल है, ये अलग अलग अवस्थाओं में हमें मिलता है। तो एक अवस्था होती है जहां वो अभी दिखता नहीं है, अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। तो एक है जहां अप्रारब्ध है, अप्रारब्ध मतलब आने वाला है, अभी प्रकट नहीं हुआ, रेडी हो गया। एक होता है बीज प्रवृत्ति के रूप में और दूसरा बीज के रूप में, कूटम बीजम, और एक फलोन्मुखम जो फल के रूप में सामने आ गया। चार अवस्थाएं हैं हमारे पाप कर्मों की। पहली अवस्था जो भी बीज के रूप में है, अभी प्रकट नहीं हुआ। दूसरी अवस्था प्रवृत्ति के रूप में, अर्थात बच्चे की प्रवृत्ति देखकर पता चलता है ये क्या करेगा। जैसे अगर बच्चा बचपन में कुछ ज्यादा चोरी वोरी करने लगे, कुछ पेन उठा ले, पेंसिल उठा ले, तो पता चलता आगे चलकर। इसीलिए एक संस्कार किया जाता है जिसमें बच्चे की प्रवृत्ति देखने के लिए उसके सामने कुछ चीजें रखी जाती है, धन रखा जाता है, भागवत रखी जाती है और कपड़ा इत्यादि, ऐसे बहुत सारी चीजें, और बच्चे को छोड़ा जाता है, देखे कहा जाता है। तो बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी कुछ जाकर पकड़ता है तो हाँ, मतलब भागवतम पकड़े तो अच्छा भक्त बनेगा, और अगर धन को पकड़ ले तो व्यापारी बनेगा, ऐसी अलग अलग चीजों को कहा जाता। तो एक प्रवृत्ति के रूप में होते हैं बीज प्रवृत्ति, और अप्रारब्धम, अप्रारब्ध मतलब अब तैयार है बस आने के लिए, और फलोन्मुखम मतलब प्रकट हो चुके हैं। तो ऐसे अलग अलग कर्म होते हैं हमारे जिनके कारण हमें यहां घूमना पड़ता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति ये बीज का नाश कर देती है हमारे हृदय में सकाम कर्म। सकाम मतलब हर कार्य करने में हम सोचे इससे मुझे क्या मिलेगा, उसको सकाम कर्म कहते हैं। मैं ये कर रहा हूं इससे मुझे क्या मिलेगा, ये सकाम कर्म है। भौतिक चीज क्या प्राप्त होगी। जैसे लोग मंदिर आते हैं, मंदिर आने में भी सोचते कि मंदिर आने से शायद मेरा व्यापार अच्छा हो जाए, तो उनको लगता है। तो ये भी सकाम भक्ति है कि हम कुछ चाह रहे हैं उसे। तो ये बीज समाप्त हो जाते हैं, हम कुछ नहीं चाहते इस जगत का कि मुझे ये मिले, वो मिले, पद मिले, धन मिले, मान प्रतिष्ठा मिले। भक्ति सबका नाश कर देती है। पहली चीज प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भक्ति के द्वारा सकाम कर्मों के बीज भी नाश हो जाते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि ये जो तीन अवस्थाएं हैं जीव की, जिनका उन्होंने वर्णन किया, सुप्त अवस्था, सुषुप्ति या स्वप्नावस्था या जागृत अवस्था, इन सब से परे आत्मा दिव्य अवस्था में स्थित हो जाती है। तो भक्ति के कारण ये जो अलग अलग, अर्थात हमारा मोह नाश हो जाता है। हम लोग ये मोह में हैं, अज्ञान में हैं, तभी तो इन चीजों में फंसे हुए हैं। तो वो मोह नाश हो जाता है भक्ति के द्वारा। और तीसरी चीज वो बताते हैं कि जितना भी अज्ञान है, अविद्या का भक्ति नाश करती है। दरअसल हमारे सारे भौतिक अस्तित्व का मूल अविद्या है, क्योंकि हम लोग अविद्या में अपने आप को शरीर मानते हैं, अपनी असली स्थिति को भूल चुके हैं। तो उस अविद्या का नाश करती है भक्ति। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे दैत्य पुत्रों, हमें भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए भक्ति, पांच तरीके बताते हैं, बड़े महत्वपूर्ण ये तरीके हैं। आज समय नहीं है, इसलिए कल इन पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी? यस।